श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 11 दिनांक 10 जून 2015 स्पीकर इज ग्रेस आदि योग प्रभु
श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमल श्रीगुरून वैष्णवांश श्रीरूप साग्र जात सगन रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगन ललिता शिविशाखानितंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो कृपा किए बुला बुला के भगवान ये ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो कृपा दिखाए अपने भक्तों के द्वारा बुलाए बुला करके उनको कृपा दिए और उनके पति लोग बड़े कर्मकांडी थे। भगवान ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करने के बाद तो बोले आप लोग अभी लौट जाओ। तो ये ब्राह्मण पत्नियाँ थोड़ा सोचने लगे अभी क्या होगा, अभी तो हमारे पतियों के पास लौट जाएंगे तो कुछ तो परिस्थिति और कुछ खराब हो जाएगा। तो ये बात जब ब्राह्मण पत्नियाँ सोच रही थी तब भगवान ये ब्राह्मण के पत्नियाँ भक्त होने के कारण से इतने बड़े कर्मकांडी थे, कर्मकांड में जो लोग लगे हैं वो लोग इतनी जल्दी भक्ति में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके मन के भीतर भोग वासनाएं रहती है और जिसके भीतर भोग वासनाएं रहते हैं तो वो इतनी जल्दी भगवान के भक्त नहीं बन पाते हैं। तो भगवान देखें कि ये मेरे इतने प्रिय भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं और उनके पति लोग इतने कर्मकांड में घिरे हुए हैं। तो भगवान ये ब्राह्मणों के पत्नियाँ जो भक्त थे उनके भक्ति के कारण तो उनके पतियों के ऊपर भी कृपा कर दिए। जाओ तुम लोग तो शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते लेकिन तुम्हारे पत्नियों जो शुद्ध भक्ति मेरे प्रति प्रदर्शन की तो उनके शुद्ध भक्ति के कारण से तुम लोग भी मेरे शुद्ध भक्त हो जाओ। ये बात को विचार करके भगवान ब्राह्मण पत्नियों को जाओ तुम लोग डरो नहीं चले जाओ तुम्हारा पति लोग भी मेरे भक्त बन जाएंगे। हाँ तो इसी प्रकार आज के प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण को बड़े धिक्कारते हैं। ये क्या है तुम लोग ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जो होते हैं बाकी तीन वर्ग का गुरु होते हैं। ब्राह्मण गुरु होता है, समाज का रक्षक होता है, दूसरे को जीवन प्रदान करता है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तीन वर्ग का गुरु माना जाता है। अब ब्राह्मण यदि भगवान को नहीं पहचानेगा तो फिर बाकी वर्ग को कैसे पहचान आएगा भगवान श्री कृष्ण को। ये क्षत्रिय वैश्य तो नष्ट हो, वैश्य शूद्र तो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो ब्राह्मण होता है वो जानना चाहिए जीवन की लक्ष्य क्या होती है। यदि ब्राह्मण नहीं जानेगा जीवन की लक्ष्य क्या है फिर वो सारा समाज को सारा संसार को सारा देशवासियों को वो कैसे एक भगवान के पास लौट जाने के लिए मार्ग प्रदर्शन करेगा। ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट क्लास, बुद्धिमान विभाग जो ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मण जो होते हैं वो हमेशा सत्व गुण में रहते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक है जाति सिद्ध ब्राह्मण और दूसरा है स्वभाव स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण। ये जो जाति सिद्ध ब्राह्मण होते हैं तो उनके भीतर ये ब्राह्मणिकाल जो क्वालिफिकेशन है, ब्राह्मण का जो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास जो सद्गुण होना चाहिए वो गुण हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो लोग जाति सिद्ध ब्राह्मण, उनके पास ये ब्राह्मण की गुण हो सकता है या नहीं हो सकता है। और इस विभाग के जो ब्राह्मण होते हैं ये वृत्तिगत ब्राह्मण होते हैं, बस ऐसे ऐसे कहें हम तो पंडित हैं। लेकिन जो लोग स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण, श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की, लेकिन जो लोग स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण होते हैं तो उनके भीतर जो ब्राह्मण का जो गुण है, सम दम तप शौच, जो भगवान भगवत गीता में बताएं ब्राह्मण के भीतर क्या क्या गुण होना चाहिए, ये गुण ये स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण में होती है। और ये स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण जो लोग होते हैं उनके भीतर एक ही लक्ष्य होता है, कैसे हमारा कार्य की तरह भगवान विष्णु को प्रसन्न करूं, उनके लक्ष्य ये होते हैं। और जानते हैं ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानते हैं। हाँ, इसीलिए पद्म पुराण में बताया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पाप परायण निजाचार निजाचार विहीनाश्च भविष्यन्ति कले युगे। कलियुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अपने आचारों से भ्रष्ट होकर के पाप में लग जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र है वो अपने जो अपने अपने निजी निजी कर्तव्य को छोड़ करके वो सारे पाप में लग जाएंगे। हर जो आश्रम होता है वो आश्रम का एक एक धर्म होती है, शास्त्र में बताया गया। गृहस्थ है, गृहस्थ का क्या नियम होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके उनको किस प्रकार का विधि विधान के अनुसार गृहस्थ जीवन को निभाना चाहिए। एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके गुरु घर में रह करके उनके लिए क्या कर्तव्य है, एक वानप्रस्थी का क्या है, एक सन्यासी का क्या है, ये सारे शास्त्र में बताया गया है। जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के घर में पधारे, युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ नारद मुनि को आश्रम देते हैं, उनका चरण कमल का प्रख्यालन करते हैं, फिर उन्होंने बड़े नम्रता के साथ नारद मुनि के चरण कमल में बैठ जाते हैं और उनके चरण कमल में बैठ करके वो बड़े नम्रता के साथ प्रश्न करते हैं। हाँ, हे मुनि, हे भगवान, मुझे बताइए, मैं एक गृहस्थ हूँ। यदियो युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज कितने उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन इतने उच्च भक्त होने के बावजूद भी वो नारद मुनि को हाँ कैसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं तो एक गृहस्थ हूँ। हाँ, हमेशा गृहस्थ लोग भक्तों के पास आकर के गिड़गिड़ाते हैं, हाँ प्रभु जी हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम तो पतित हैं। हाँ, ऐसा वो पतित नहीं है, जो गृहस्थ भक्ति में आ गया वो पतित नहीं है। हम ऐसे वो अपने को अपने ऐसे स्वभाव को दिखाते हैं, हम कितने पतित हैं, तो उनके सामने ब्रह्मचारी भी कहता है तुम तो पतित हो, मैं तो आपके कई गुना और महापतित हूँ। अभी मुझे आदेश होगा तो मेरा मैं चटाई को रोल करूँगा और मेरा बक्सा को मेरे कंधे में लूँगा और किधर मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मैं तो आपसे ही पति हूँ, क्योंकि शुद्ध भक्त मैं इतने शुद्ध नहीं हूँ कि मुझे ऐसे एक पवित्र स्थान में रहने के लिए आज्ञा होगा, तो मुझे यदि अभी आदेश होगा तो मुझे और किधर जाना पड़ेगा, तो मैं आपसे ही पतित हूँ। जो भक्त होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जो भी आश्रम के भक्त हो, यदि उनके भीतर भक्ति है वो हमेशा अपने को पतित समझेगा। और ये पतित समझना यही भक्ति का चिन्ह है। तो युधिष्ठिर माना विदुर जी को जब दुर्योधन ने अपमान किया, ये और ये ब्राह्मण ना ब्रह्मचारी आश्रम क्या है ना सन्यासी आश्रम का तैयारी है। ब्रह्मचारी आश्रम में जो लोग रहते हैं ये आश्रम सन्यासी आश्रम का तैयारी है। जो लोग एक्सपर्ट ब्रह्मचारी होते हैं, जो दक्ष ब्रह्मचारी होते हैं, वो हमेशा तीर्थ पर्यटन में लगे रहते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन जब विदुर जी को धिक्कारा, अपमान किया, तो विदुर जी चले गए और सारा तीर्थ भ्रमण किए। भ्रमण करते करते संयोग बस उनको मैत्रेय मुनि मिल जाते हैं और मैत्रेय मुनि को प्रश्न करते हैं। तब तक विदुर जी मैत्रेय मुनि को प्रश्न करना बंद नहीं करते हैं जब तक ये उनसे ये उत्तर नहीं पाए जाते कि मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है हाँ वो भगवान के सेवा में स्थित होना। ये जवाब जब तक मैत्र मुनि से विदुर जी को नहीं मिल जाती तब तक वो प्रश्न करते रहते हैं। हर आश्रम का यदि वो ध्येय लक्ष्य भगवत प्राप्ति, फिर भी एक निर्दिष्ट नियम विधि कर्तव्य बताया गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासश्रम में थे कितने अपने सन्यास धर्म को कठोर से पालन करते थे, स्वयं भगवान होकर के भी ऐसे ही तो कह देते थे अपने सन्यासी शिष्यों को, हाँ कह देते थे बैरागी हो या करे प्रकृति संभाषण देखी थे ना पारे अमित आहार बदोन, जो बैरागी हो करके हाँ ऐसा कार्य करता है मैं उसका मुंह नहीं देखना, ऐसे अपने सन्यास आश्रम को बड़े ही कड़क से कठोर से वो निभाएं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है जो आश्रम में है वो आश्रम में कुछ नियम होती है, और नियम को उल्लंघन करना मतलब हाँ प्रभुपाद जी एक जगह पर बताते हैं कि धर्म का पालन करना, विप्र अच्युतों का आश्रय लेना और धर्म का सिद्धांत, शास्त्र का क्या नियम है हमारे लिए वो हमारे जीवन में स्वीकार करना। जब तक ये तीनों चीजों को कोई भक्त मान लेता है, पालन करता है, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, ये तीनों चीजों को जब तक वो भक्त पालन करता है तो उनका आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित है। इसलिए पितामह भीष्म कह दिए हैं युधिष्ठिर महाराज को और पांडवों को, आप लोग के ऊपर इतने भयंकर विपत्ति आने के बाद भी आप लोग इतने सुरक्षित कैसे ना, ये जगह पे आप लोगों ने आश्रय लिए, क्या विप्र धर्म अच्युत आश्रय, हे युधिष्ठिर महाराज आप अपने भाइयों के साथ ये स्थान में आश्रय लिए हो इसलिए आप सुरक्षित हो। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, ब्राह्मण के आश्रय लेना चाहिए और अच्युत अधर्म के आश्रय लेना चाहिए। ये तीनों जगह में तीन स्थान में जो आश्रय लिया है वो कभी पतित नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पाप परायण निजाचार विहीनाश्च भविष्यन्ति कले योगे, कलयुग में सब ऐसे हो जाएंगे। और ये बात भी कहा जाए विप्र वेद विहीनाश्च, विप्र जो है वो वेद पाठ छोड़ देगा, प्रतिग्रह परायण कहाँ पे दक्षिणा मिलेगा दौड़ेगा, वेद पाठ छोड़ेगा प्रतिग्रह परायण हाँ दक्षिणा के पीछे जाएगा, और क्या ना अत्यंत कामिनी क्रूरा, अति कामुक बन जाएगा और क्रूर निठुर बन जाएगा, भविष्यन्ति कलयुग। ये ब्राह्मण कलियुग में ब्राह्मण कैसे होंगे ये शास्त्रों के द्वारा बताया गया, और आज के कर्मकांडी ब्राह्मण भी हाँ श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण भी ये बात को बताते हैं। ब्राह्मण जो होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि सत्य क्या है। गौतम मुनि के पास जब एक बालक आए, और बालक जब आए आकर के वो बालक गौतम मुनि को पूछे कि हे गुरुदेव मुझे आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना है, तो कृपया मुझे आप अपने आश्रय में रखिए, शरण दीजिए। तो गौतम मुनि वो बालक को पूछे, बालक तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको शिक्षा दूँ, क्या योग्यता है आपके पास मैं आपको ज्ञान प्रदान करूँ, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम किस क्लास के व्यक्ति हो। तो सत्यकाम बालक जो थे वो बोले, मुझे तो मालूम नहीं, मैं माँ को पूछ के आता हूँ, मैं बता दूंगा आपको। तो सत्यकाम जाते हैं अपने माँ के पास और माँ को पूछते हैं, माँ गुरुजी ने बताएं कि मेरा गोत्र क्या है। तो उनके माँ ने बोले, बेटा तुम्हारा पिताजी कौन है मुझे ही पता नहीं है, और तुम्हारा पिताजी कौन है मुझे जब पता नहीं तुम्हारा गोत्र क्या है मैं कैसे बताऊंगी। तो वो बालक आया गौतम मुनि के पास और गौतम मुनि को बता दिए कि मेरा माँ ने बताया हाँ मेरा गोत्र क्या है उनको भी मालूम नहीं है। तो गौतम मुनि बोले, हाँ तुम आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए योग्य व्यक्ति हो क्योंकि तुम सत्य बोला, ब्राह्मण जो होता है वो सत्य बोलता है, हाँ जेहेतु तुम सत्य बोले हो तुम ब्राह्मण हो और तुम वेदों की शिक्षा लेने के लिए योग्य व्यक्ति हो। तब फिर गौतम मुनि वो बालक को अपने आश्रम में रख करके उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी जब वो कलकत्ता में रह रहे थे उस समय एक ब्राह्मण थे, तो अपने ब्राह्मण का एक ऐसा होता है, ऐसा पात्र होता है, पट होता है, कमल है, ऐसा कुछ होता है, उसमें थोड़ा फूल रखता है, थोड़ा घिसा हुआ चंदन रखता है, हाँ थोड़ा पानी रखता है और थोड़ा कुमकुम रखता है, ऐसे टिप्पा लगाता है दक्षिणा दो ऐसा। तो प्रभुपाद जब कलकत्ता में रह रहे थे ऐसे एक ब्राह्मण थे, तो ऐसे अपने ये बास्केट में ये सारे चीज़ों को रख करके दुकान से जाता था और दुकानी वालों को टिक्का लगाता था और दक्षिणा लिया करता था। तो उनको पता चला तो एक महान वैष्णव आए हुए हैं वहाँ पे, तो गए प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लिए और लेने के बाद वो चले गए। और जाने के बाद अच्युतानंद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी को बोले, प्रभु स्वामी जी ये कौन थे? तो प्रभुपाद जी बोले ये एक किराए के ब्राह्मण था। ये एक किराए, ये पैसा लेने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो होता है पैसा का लाल, उनको उनके भीतर पैसा के लालच नहीं रहना चाहिए, तभी वो ब्राह्मणत्व को उनका ब्राह्मण तो सुरक्षित है। मैं रविवार की क्लास में बताया था ब्राह्मण हो करके यदि धन संचय करता है तो उनका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा, ओ ब्राह्मण नहीं रहेगा। महाभारत में लिखा गया है, कई शास्त्र में लिखा गया, ब्राह्मण को धन संचय करने के लिए अनुमति नहीं है, जो उसके पास हाँ भगवान के लिए। दधीचि मुनि के पास जब देवता लोग गए, हाँ वो जान गए, दधीचि मुनि जान गए, हे देवता लोग तुम्हारे हित करने के लिए मैं मेरा जीवन को भी विसर्जन करने के लिए तैयार हूँ, क्या बोलो, मांगो, क्या मांगना है मुझे? तो इंद्र ने मांगे कि आपका शरीर का अस्थि चाहिए। असुरों को भगवान ने आदेश दिए थे दधीचि मुनि के हड्डी से लेकर, हड्डी को लेकर जब वज्र बनाया जाएगा वो वज्र के द्वारा असुरों का नाश होगा। तो दधीचि मुनि तैयार हो गए अपने ये संसार की मंगल करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापन करने के लिए और आसुरी की शक्ति को नाश करने के लिए। पहले समय में जो मुनि लोग होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, अपने जीवन तक को विसर्जन कर देते थे। हाँ, तो इसी प्रकार ब्राह्मण के विषय में कहा गया है। तो आगे जा करके प्रभुपाद जी ये विषय में बताते हैं, भगवतम ब्रह्म परमम साक्षात भगवंतम अधोक्षजम। हाँ, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास जब भगवान के मित्र लोग आए, उनके भक्त लोग आए, तो ये लोग उनको नहीं पहचान पाए और उनको मनुष्य दृष्टिया मनुष्य बुद्धि करने लगे। अधोक्षजम, ये श्लोकों में एक शब्द आया हुआ है अधोक्षजम। मधोक्षजम मतलब भौतिक इंद्रियों से परे। तो ये ब्राह्मण जो होते हैं वो अच्छी तरह से जानता है ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवद्धाम लौट जाना। भागवतम में भी बताया गया है, पराभव तावत अबोधो जात यावत न जिज्ञास तो आत्मतत्वम तावत क्रिया इदं मे बने बे कर्म कर्मातं ज शरीर बंध। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि वो आत्मतत्वों के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है तब तक वो भौतिक संसार में उसका पराभव होते रहेगा। तावत क्रिया इदं मन बे कर्मातं जेन शरीर बंध। जब तक वो आत्मतत्व के ऊपर जिज्ञासा नहीं करता है तो भौतिक जगत में उसका पराभव होते ही रहेगा। तावत क्रिया इदं मन बे कर्मातं जेन शरीर बंध। और इसी प्रकार वो सकाम कर्म में गिर करके वो भौतिक बंधन में नष्ट हो जाएगा और भौतिक बंधन में बंध जाएगा। जब तक जिसी को जिसको मनुष्य शरीर मिला है वो मनुष्य शरीर में यदि वो आत्मतत्व के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है तो उसका पतन हो जाएगा। तावत क्रिया इदं मन वे कर्मातंग देने शरीर बंध, फिर वो सकाम कर्म में चला जाएगा। और सकाम कर्म में जाना मतलब भौतिक बंधन में गिर जाना। वेदों में कर्मकांड विभाग को वेदों में सारे बातें बताया गया, भौतिक विद्या भी बताया गया और आध्यात्मिक विद्या भी बताया गया। वेदों में कर्मकांड विषय जो बताया गया वो भौतिक है। वेदों में जो कर्मकांड विभाग है वो अपरा विद्या है। आजकल के जो स्कूल कॉलेज के जो शिक्षा दिया जा रही है वो अपरा विद्या है। जो ज्ञान के द्वारा हमें भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो भौतिक है, भौतिक विद्या। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं क्या है, जड़ विद्या जो तो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव को कराए गाधा। जी भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो विद्या आपका आपका संबंधित नहीं है वो जीव को गधा बना देता है भौतिक संसार में। अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव को कराए गाधा। जो ज्ञान हमारे पास, जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो विद्या यदि हमें भगवान को समझने के लिए मदद नहीं कर पा रहा है, वही विद्या हमारा नाश के कारण बनेगा, घमंड आएगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और यही यही बात यहाँ पर ब्राह्मण के जीवन में दिखी जाती है। कर्मकांडी है, कर्मकांडी मतलब भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। स्वर्ग जाना कौन सा बड़ी बात है, भौतिक कार्य में लगना। इसलिए भगवद्गीता में भगवान बार बार वारण करते हैं, मना करते हैं, कोई भी सज्जन व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए ये संसार में कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण है, वेदों की ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है तो अलग बात है। ये ज्ञान होने के बाद भी यदि इस प्रकार का कार्य करें तो फिर उनको क्या कहा जाएगा। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी आज के प्रसंग में ये सारे ब्राह्मण को धिक्कारते हैं। मनुष्य दृष्टिया साक्षात भगवान का प्रकाश, ये उनके शुद्ध भक्त आप लोगों के पास आए हुए हैं, आप लोग उनको पहचान नहीं पा रहे हो। भगवान भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अभिन्न होते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण लोग वो लोगों को नहीं पहचान सके। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है श्लोकों की तरह, मनुष्य दृष्टिया तं ब्रह्म परमम साक्षात भगवत अधोक्षज मनुष्य दृष्टिया। मनुष्य बुद्धि की है, भगवान के शुद्ध भक्तों को, ये ब्रजवासी भक्त भगवान के नित्य लीला पार्षदक को ये क्या किए ब्राह्मण लोग ने, मनुष्य दृष्टिया, मनुष्य बुद्धि की है। इसीलिए दुष्प्रज्ञा उनका, क्योंकि ये पहले से ये लोगों का बुद्धि विकृत था। जो लोगों का बुद्धि विकृत रहती है मतलब भगवान के विरुद्ध रहती है, भगवान अनेक अनेक योग में अनेक अनेक रूप में अनेक अनेक अवतार लेकर के संसार में प्रकट होते हैं, राम नृसिंह ऐसे। और कलयुग में भगवान, ये भगवान का ये भी एक अवतार है, भगवान का जो अर्चा विग्रह है ये भगवान के अनेक अवतारों में से ये एक अवतार है। अर्चा विग्रह भगवान का एक अवतार है, लेकिन कुछ कुछ लोग आते हैं भगवान के सामने खड़े होते हैं, क्या ये लोग इतने एक पत्थर को इतना सजाते हैं, रोज सजाते हैं, उनका पगड़ी बांधते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, टीपा लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, कितने दामी गहने लगाते हैं, कितने महंगे पोशाक पहनाते हैं, रोज बदलता है रोज। एक दिन पहना तो हफ्ता भर काम चलेगा नहीं, ये इस्कन के भक्त लोग रोज रोज नए नए वेश बनाते हैं भगवान को, कि जानते हैं ये भक्त लोग ये सामान्य कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान का एक अवतार है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, श्री विग्रह न माने सही तो पाषाण, अस्पृश्य अदृश्य सही हो जमदंड। जो भगवान का इस विग्रह को नहीं मानता है, श्री विग्रह न माने सही तो पाषाण, अस्पृश्य उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। सही हो जमदंड, वो जम उसको जमराज उसको दंडित करते हैं। जो श्री विग्रह को नहीं मानता है तो उसको जमराज दंड देते हैं। हमें देखें पहले समय में भक्तों लोग विग्रह के साथ बात करते थे। साक्षी गोपाल जो जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर साक्षी गोपाल जी हैं, जब वो ब्राह्मण कहे चलो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा साक्षी देने के लिए, तो विग्रह बोले मैं कैसे चलूँगा, मैं तो चल नहीं सकता। तो ब्राह्मण ने कह दिए आप यदि बात कर सकते हो फिर चल क्यों नहीं पाओगे। अब ब्राह्मण ने कह दिए आप यदि बात कर पा रहे हो, विग्रह बात करते थे पहले समय, विग्रह बात करते थे भक्तों के साथ, और जब बात करते थे तो भक्तों ने कह दिया आप यदि बात कर पा रहे हो फिर चल क्यों नहीं पाओगे। तो फिर भगवान ने वो भक्तों के पीछे चले चल के आए हो भक्तों के लिए साक्षी देने के लिए। तो इसीलिए जो भगवान का जो अवतार है अर्चा विग्रह के रूप में, उनको मनुष्य दृष्टिया, ये ब्राह्मण लोग, ये मनुष्य दृष्टिया, ये संसार के ऐसे कुछ है लोग, हाँ मनुष्य दृष्टिया। भगवान, भगवान के शुद्ध भक्तों को जो मर्त्य बुद्धि करता है उनका बहुत बड़ा दुर्गति होता है, मनुष्य दृष्टिया नहीं, ये बुद्धि नहीं करना चाहिए। हाँ इस प्रकार एक व्यक्ति है, हाँ वो अंधा है और सुबह हो गया, पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो गए, चारों तरफ उजाला फैल गया, और जो जिसके पास आँख है वो देख पाएगा, हाँ सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुए हैं, हाँ सूर्य ऐसा होता है, उनका रोशनी ऐसे होती है, जिसका पास आँख है वो देख पाएगा, ये सारे जान पाएगा। लेकिन जो लोग अंधे हैं तो उनको जाके बताओगे, अरे भाई उठ जाओ, सुबह हो गया, उठ जाओ, वो क्या कहेगा, है मैं सोया था, क्यों मेरा सोने में बाधा दिया, हाँ क्या तुम्हारा सूर्य है, क्या पूर्व दिशा है, क्या सूर्य का रोशनी है, वो क्या, वो कैसे जानेगा, उसके पास तो आँख नहीं है। ठीक, उसी प्रकार जिसके पास आँख नहीं है वो कैसे भगवान दर्शन करेगा। जिस प्रकार के अंधे व्यक्ति के पास आँख न होने के कारण सूर्य को दर्शन नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पा रहा है करके सूर्य नहीं है, सूर्य है, लेकिन उनका वो कमजोरी है कि वो सूर्य को देख नहीं पा रहा है, सूर्य को देखने की उनके भीतर शक्ति नहीं है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं, हाँ क्या भगवान है, भगवान कहाँ है, किधर है भगवान, अरे तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास आँख नहीं है करके क्या भगवान नहीं है। और जिसके पास आँख है, हाँ भगवान के सामने खड़े होते तो भगवान के सामने हटना नहीं चाहते। जो जिन्होंने भगवान को देख पा रहे हैं अपने आंखों के द्वारा तो फिर वो देख पा रहे हैं, और जिनके पास आंख नहीं है वो तो वो कहेगा ना भगवान भगवान कुछ नहीं है चलो। इसीलिए भगवान भी ये बात बताए, नहं प्रकाश से सर्वस्य युगो माया समावृत मूढ़ न अभिजानती मामेव अजम अव्ययम्। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं, जिनके पास मुझे दर्शन करने की शक्ति है, सुकृति है, जिसके पास पुण्य है मुझे देखने की, ऐसे व्यक्ति के सामने मैं प्रकाश होता हूँ। नांग प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे भक्त लोग होते हैं, कितने दिनों से सालों सालों बीत जाता है, उनके भीतर विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान इतने कृपा करके मुझे भक्ति का जीवन दिए हैं, वो कुछ उनके भीतर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। नहीं तो और दूसरी बात होता है कि उनके पूर्व जन्म का कर्म ऐसा होता होगा, और पूर्व जन्म का कर्म के कारण वो भगवान को जान नहीं पाते हैं। ये होता है कि भगवान उनको वो भक्त वो व्यक्ति के सामने वो अपने को दिखाना नहीं चाहते होंगे, ऐसे अनेक अनेक कारण हो सकता है। आज जो भक्तों ने भगवान को दर्शन कर पा रहे हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, तो समझना चाहिए ये वो साधारण नहीं है, बहुत बड़े हैं। भले वो भौतिक शरीर में है, भौतिक संसार में है, हाँ वो संसार में कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े भाग्यवान व्यक्ति है। जिनके पर भगवान की कृपा है वो कोई सामान्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाँ वही ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, स्वयं वो कहे भी ये बात को स्वीकार किए, अरे तुम लोग स्त्रियाँ हो, हाँ तुम लोग जो जो बातें करना चाहिए, जो शुद्ध भक्ति करना चाहिए आप लोग कर लिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। आखिर में ब्राह्मण लोग स्वीकार करेंगे, उनके पत्नियों को तारीफ करेंगे, आप लोग कितने भाग्यवान हो, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति आप लोग ने कर लिए लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। अरे ये ब्राह्मण पत्नियां डर रही थी, क्या हो जाएगा क्या होगा डर रही थी, लेकिन भगवान हाँ वो ब्राह्मणों के भीतर शुद्ध भक्ति प्रदान करने के बाद वही ब्राह्मण लोग अपने पत्नियों को प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्तों से कुछ लेने के लिए इच्छा रखते हैं, भगवान भगवद गीता में बताए, क्योंकि अपने प्रेमी भक्तों से वो इतने ऐसे ये रहते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं वो भक्त मुझे कुछ दे, यदि वो कुछ किसी से कुछ चाहते नहीं है, वो स्वतंत्र सौराट है, लेकिन अपने प्रेमी भक्त जब कुछ देता है तो वो बड़े उसको ग्रहण अस्नामी उसको ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मक्त्या प्रयोगति तथा भक्ति ऊपर उतर अस्नामी प्रयोग आत्मन। भगवान कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति के साथ जब कुछ छोटी सी भी चीज़ देता है मैं उसको बहुत बड़ा मान करके ग्रहण कर लेता हूँ, विदुर रे घरे कृष्ण करी ल भोजन है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का 56 प्रकार का पौटी को छोड़ करके दुर्योधन के ना विदुर के झुपड़ी में चले गए। क्यों ना, विदुर के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम थी, ये प्रेम उनके झुपड़ी में खींच लिया। वो राजमहल को छोड़ करके भगवान विदुर के झुपड़ी में चले गए और विदुर ने जो भी अपने साग भात था अपने कुटिया में उनको खिलाया और भगवान बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। ये प्रेम की बंधन ऐसा है कि बंधन है जिसको भगवान तोड़ नहीं पाते। भगवान की भीतर ये शक्ति नहीं है वो प्रेम के बंधन को तोड़ के चले जाने के लिए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर छोड़ करके जब वो भगवान द्वारका आ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना किए कि भैया और तो कुछ दिन रुक जाओ, यदि वो भगवान श्री कृष्ण अपना अधिक से अधिक समय हस्तिनापुर पांडवों के साथ बिताएं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज पांडव लोग को शांति प्राप्त नहीं हो रहा था। वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़ना चाह नहीं रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे भैया और तो कुछ दिन रुक जाओ, तो उनकी जो प्रेम भरी जो ये विनती है वो विनती को भगवान ठुकरा नहीं पाए। हाँ, और जो प्रोग्राम बनाए थे, वो जो सोच रखे थे मेरा घर लौट जाना द्वारका जाना को कैंसल कर दिए और कुछ दिन वो हस्तिनापुर में रुक गए। तो ये बातों के ऊपर ये यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मर्त्य आत्मन ने मे निरे मर्त्य बुद्धि किए। ये कर्मकांडी ब्राह्मण लोग मर्त्य आत्मनी यहाँ पर कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कि मर्त्य आत्मन मिथ्या ही भौतिक शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हुए मर्त्य बुद्धि किए ये ब्राह्मण लोग भगवान और भगवान भक्तों में। न मैं निरे मतलब ये मर्त्य बुद्धि होने के कारण ये ब्राह्मण लोग भगवान के भक्तों को आदर नहीं दिए, सम्मान नहीं किए। इसलिए जब कहा गया कहीं पर अर्चे दारुमयी शैलीमयी ऐसा कुछ है का हाँ, ये लकड़े में बने हुए कि धातु में बने हुए कि पत्थर में बने हुए कि और जो भी है ये 6 प्रकार का चीज़ों में तो वो चीज़ों में बनाया हुआ चीज़ों को कभी भी ये भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े ही कठोर शब्द में ये ब्राह्मण को धिक्कारते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, ब्राह्मण तुम लोग समाज का पथ प्रदर्शक है, भगवान के पास पहुँचाने का मतलब एजेंट हो, प्रतिनिधि हो, आप लोग साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हो, और तुम लोग जो यदि ये पथ होड़ जाओगे तो ये समाज का क्या होगा, ये समाज का कल्याण कौन करेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आई एम मेकिंग सम ब्राह्मण, मैं कुछ ब्राह्मण बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इस्कन संस्था में कुछ ब्राह्मण है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस सारा पृथ्वी में सारा संसार में अग्नि की तरफ फैल रही है। ये तभी संभव है जिनके भीतर ब्राह्मण का गुण है, ये ऐसे एक शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा वो भगवान के संदेश को प्रचार कर सकते हैं, फैला सकते हैं। लेकिन बड़े क्षोभ की विषय, बड़े दुख की विषय है भौतिक संसार में जो तथाकथित ब्राह्मण है, जो जाति सिद्ध ब्राह्मण है, वो अपने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पद से च्युत हो जाते हैं। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण को एक प्रकार का सावधानी करते हैं, चेतना देते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा मार्ग ये है, तुम ये रास्ते में जाने वाले हो, ये रास्ता में क्यों कर्मकांडी रास्ता में क्यों जा रहे हो, अपने जो रास्ता क्यों छोड़ रहे हो, इस प्रकार का एक उपदेश दे करके तो तथाकथित कलियुग के ब्राह्मण के लिए एक प्रकार का रास्ता बताते हैं। ये रास्ता में चलो, ये रास्ता में जाओगे तो भगवान कृष्ण मिलेंगे। तो वो रास्ता क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।